देखिए भाई आगे सबक वल मुरादु बिअदम इल्क्तिरानि अन यकून बिहसबिल वज़इल अव्वल फदखल फीही अस्माउल अफआल लिअन्न जमीअहा इम्मा मनकूलतुन अनिल मसादिरिल असलियति सवाउन काना नक़्लु फीहा सरीहन नहवु रुवैदा फइन्नहु क़द युस्तअमलु मस्दरन अयज़न अव गैर सरीहिन نحو هيهات فإنه وإن لم يستعمل مصدرا إلا أنه على وزن قوقا مصدر قوقا. گزشتہ سبق میں اسم کی تعریف کے اندر جو آخری قید آئی تھی غیر مقترنین بأحد الأزمنة الثلاثة اس کے بارے میں ہم نے پڑھا بھائی, اور ملا جامی رحمہ اللہ نے آپ کو بتلایا کہ اس قید کے ذریعے دراصل صاحب کافیہ فعل کو نکالنا چاہتے ہیں اسم کی تعریف سے, کیونکہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم, فعل اور حرف. تو اس غیر مقترنین کی قید کے ذریعے فعل کو نکالنا چاہتے ہیں, اور پیچھے جو فی نفسی ہی کی قید آئی تھی اس کے ذریعے حرف کو نکال دیا تھا, کیونکہ حرف کا معنی فی نفسی ہی نہیں ہوتا بلکہ فی غیری ہی ہوتا ہے. فی نفسی ہی کا معنی کیا تھا آسان لفظوں میں, کہ وہ معنی مستقل ہو بھئی. تو اسم اور فعل دونوں کا معنی مستقل ہوتا ہے اور حرف کا معنی غیر مستقل ہوتا ہے. تو جب کہہ دیا کہ اسم وہ کلمہ ہے جو ایسے معنی پر دلالت کرے کہ وہ معنی مستقل ہو تو حرف نکل گیا, لیکن فعل ابھی بھی داخل ہے کیونکہ فعل کا معنی بھی مستقل ہے. تو اس کو پھر غیر مقترنین کی قید کے ذریعے نکال دیا کہ وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو بھئی, اور فعل کا معنی تو تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملا ہوتا ہے. تو وہ اس قید کے ذریعے نکل گیا اسم کی تعریف سے. اور یہاں وہ اشکال بھی پہلے ذکر کیا تھا, وہ بھی دوبارہ مختصراً سمجھ لیں کہ اسم کی تعریف میں لفظ آیا معنن فی نفسی ہی, ایسا معنی جو اپنی ذات کے اعتبار سے ثابت ہو یعنی مستقل ہو, کہ اس سے کون سا معنی مراد ہے, یا تو اس سے معنی مطابقی مراد ہوگا یا معنی تضمنی مراد ہوگا, اور معنی التزامی وہ تو مہجور ہے, وہ تو متروک ہے, تعریفات میں استعمال نہیں ہوتا کیونکہ وہ معنی موضوع لہو کے خارج پر دلالت کرتا ہے, اس کے ساتھ لازم ہوتا ہے لیکن ہوتا خارج ہے تو اس کی طرف ذہن فوراً نہیں جاتا, تو اس لیے تعریفات میں وہ مہجور ہے اور متروک ہے. تو معلوم ہوا یہ جو معنی کا لفظ آیا یہ معنی مستقل ہونا چاہیے, یہ کون سا معنی مراد ہے, معنی مطابقی مراد ہے کہ معنی مطابقی مستقل ہونا چاہیے, یا معنی تضمنی مراد ہے کہ معنی تضمنی مستقل ہونا چاہیے. اگر آپ کہتے ہیں کہ معنی مطابقی مستقل ہونا چاہیے پھر تو فعل اسی قید سے نکل گیا, کیونکہ فعل کا معنی مطابقی تو مستقل نہیں ہوتا, فعل کا معنی تضمنی یعنی وہ جو حدث ہے وہ مستقل ہوتا ہے. تو پھر تو فی نفسہ کی قید کے ذریعے فعل نکل گیا, تو پھر اگلی قید غیر مقترنین لگانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ فی نفسی ہی سے مراد جو ہے معنی تضمنی ہے, ایسا معنی تضمنی جو مستقل ہو, اسم وہ کلمہ ہے جو دلالت کرتا ہے ایسے معنی تضمنی پر کہ وہ معنی کیا ہونا چاہیے, مستقل ہونا چاہیے, پھر تو بہت سے اسم ہی نکل جائیں گے اسم کی تعریف سے, کیونکہ معنی تضمنی کس کو کہتے ہیں جو معنی موضوع لہو کے جز پر جس میں دلالت ہوتی ہے, وہ معنی موضوع لہو کا جز اس میں مراد ہوتا ہے, اور معنی موضوع لہو کا کوئی جز ہوگا تو معنی تضمنی ہو سکے گا, اگر جز ہی نہیں ہے تو معنی تضمنی وہاں ہوگا ہی نہیں. تو وہ اسم جن کا معنی تضمنی ہوتا ہی نہیں یعنی ان کا معنی کا جز ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ تو اس سے نکل گئے. جیسے ضرب ان کا کیا معنی ہے, پٹائی کرنا, اس کا تو ایک ہی معنی ہے, اس میں دو یا تین چیزیں تو ہیں نہیں. فعل کے اندر تو ایک کیا تھا, حدث تھا, ایک زمانہ تھا, ایک نسبت الی الفاعل, وہاں تو معنی تضمنی ہو سکتا ہے کہ کیا کس کا ارادہ کر لیا جائے, حدث کا ارادہ کر لو یہ ایک جز ہے, یا زمانے کا ارادہ کر لو یا کس کا ارادہ کر لو, نسبت الی الفاعل, وہاں تو معنی تضمنی ہو سکتا ہے, لیکن ہر لفظ کے تو اس طرح معنی اس کا مرکب نہیں ہوتا. تو وہ اسم نکل گئے جن کا معنی تضمنی ہوتا ہی نہیں ہے, क्योंकि आपने क्या तारीफ की, इसम वो कलिमा है जो दलालत करता है ऐसे माने तजमुनी पर जो मुस्तकिल हो, तो वो तमाम इसम निकल गए जिनका माने तजमुनी होता ही नहीं है। होगा तो फिर हम देखेंगे मुस्तकिल है या मुस्तकिल नहीं है। बात समझ में आ गई? तो या तो इसे माने मुताबिकी मुराद लो, फिर भी सही नहीं क्योंकि फिर फेल निकल जाता है, और अगर माने तजमुनी मुराद लें तो फिर यह भी ठीक नहीं क्योंकि बहुत से इसम निकल जाएंगे, या इससे मुतलक माना मुराद है। मुतलक माना, ये लफ्ज मुतलक को ना देखें, लफ्ज मुतलक की वजह से तलबा परेशान होते हैं। यानी माने मुतलक का मतलब यह है ऐसा माना जिसमें कोई कैद नहीं, कोई भी माना हो लेकिन मुस्तकिल होना चाहिए, चाहे वह मुताबिकी हो चाहे तजमुनी हो। माने मुतलक का क्या माना? माने मुताबिकी में कौन सी कैद थी? मुताबिकी की। माने तजमुनी में कौन सी कैद थी? तजमुनी की। लेकिन मुतलक माना जिसमें कोई कैद ना हो, बस माना होना चाहिए जो भी हो लेकिन होना मुस्तकिल चाहिए, चाहे मुताबिकी हो चाहे तजमुनी हो। बात समझ में आ गई? तो अगर मुतलक माना मुराद है कि कोई भी माना मुस्तकिल हो, तो वो कहते हैं वो भी यहां पर मुराद लेना ठीक नहीं है, इसलिए क्योंकि मुतलक का वजूद खारिज में होता ही नहीं है। मुतलक हमेशा मुकय्यद के जिमन में पाया जाता है, जैसे हैवान है मुतलक और हैवान नातिक मुकय्यद है, हैवान साहिल मुकय्यद है, हैवान नाहिक मुकय्यद है, हैवान जुखुआर मुकय्यद है। तो खारिज में मुझे आप मुतलक हैवान दिखाएं जिसमें कोई कैद ना हो। खारिज में मुतलक हैवान है ही नहीं, हर हैवान दूसरे से मुख्तलिफ है। बकरियां, बकरी एक किस्म के हैवान है, गाय बैल एक किस्म के हैवान हैं, घोड़ा वगैरह एक किस्म के हैवान हैं, गधा एक किस्म का हैवान है, इंसान एक किस्म का हैवान है, तो हर एक का फसल है जो दूसरे से उसको जुदा कर रहा है। आप पहचानते हैं या नहीं? हर हैवान दूसरे से मुख्तलिफ है, आप पहचानते हैं, ये फलां किस्म का हैवान है, ये फलां किस्म का, ये फलां किस्म का, तो सब के लिए फसल है चाहे आप उसको जानते हैं या जानते नहीं है। लेकिन आप फर्क तो करते हैं ना कि ये फलां किस्म का हैवान है, ये परिंदा है या ये ऊंट है या ये फलां है, हर नस्ल को आप जानते हैं। तो हर नस्ल के लिए कोई ना कोई क्या होगा, कैद होगी, कोई ना कोई फसल होगा, कोई ना कोई कैद होगी। तो आप मुझे कोई ऐसा हैवान दिखाओ जिसमें कोई भी कैद ना हो। ऐसा हैवान है ही नहीं, मुतलक का खारिज में वजूद होता ही नहीं है। मुतलक का वजूद हमेशा किसके जिमन में होता है? मुकय्यद। इंसान है, इंसान असल में क्या, हैवान नातिक। तो जब इंसान है तो गोया हैवान भी है, इसी के जिमन में मुतलक हैवान भी है। मसलन मैं आपसे कहता हूं कि मुझे कोई हैवान लाकर दिखाओ, मुझे मैंने कोई कैद लगाई नहीं, मुतलक रखा। अब चाहे आप गाय ले आए तो भी आपने मेरी बात पूरी कर दी, क्योंकि गाय अगरचे हैवान जुखुआर है लेकिन इसी के जिमन में क्या मौजूद है, हैवान भी है, मुतलक भी मौजूद है, हैवान तो है। या आप घोड़ा ले आए तो भी आपने मेरी बात पर अमल कर दिया, मैंने क्या कहा था, मुझे कोई हैवान लाकर दिखाओ। आप घोड़ा ले आए तो यह हैवान है कि नहीं, ये भी मुतलक, तो मुतलक इसमें भी मुतलक मौजूद है। आप बकरी ले आए तो भी आपने मेरी बात पूरी कर दी। तो मुतलक हमेशा किसके जिमन में होता है? मुकय्यद के जिमन में, मुकय्यद के अंदर मौजूद होता है। तो मुतलक का अलग वजूद नहीं होता। तो अगर आप यहां माना से मुतलक माना मुराद लेते हैं तो मुतलक का तो अलग खारिज में वजूद है ही नहीं। मुतलक माना यानी जो भी माना हो, और उसमें दो ही सूरतें हैं, या वो मुताबिकी होगा या तजमुनी होगा। माने मुताबिकी के अंदर भी मुतलक माना है, माने तजमुनी के अंदर भी मुतलक माना है, और माने इल्तिजामी उसमें भी मुतलक माना है, लेकिन वो यहां पर महजूर है इसलिए उसको मैं बार बार जिक्र नहीं कर रहा। बात समझ में आ गई? तो मुतलक भी हमेशा किसके जिमन में होता है? मुकय्यद के जिमन में होता है, अलग नहीं होता। तो जब मुतलक मुकय्यद के जिमन में होगा तो वो तो या तो मुताबिकी के जिमन में होगा या तजमुनी के जिमन में होगा, और मुताबिकी भी ठीक नहीं है और तजमुनी भी ठीक नहीं है। अभी हमने बता दिया मुताबिकी मुराद लोगे तो फेल निकल जाएगा क्योंकि फेल का माना मुताबिकी मुस्तकिल नहीं है, और माना तजमुनी मुराद लोगे तो फिर तो बहुत से इसम निकल जाएंगे। मालूम हुआ न यहां माने मुताबिकी मुराद ले सकते हैं, न माने तजमुनी मुराद ले सकते हैं, न मुतलक माना। मुतलक माना का क्या मतलब? जो भी माना, जो भी माना हो लेकिन होना मुस्तकिल चाहिए, चाहे मुताबिकी हो चाहे तजमुनी हो। तो उसका जवाब भी गुजर गया था कि यहां माना से मुराद मुतलक माना है। क्या मुराद है? मुतलक माना है। तो भाई इश्काल तो यह हुआ था कि मुतलक का वजूद मुकय्यद के जिम्मन में होता है, मुतलक का तो अलग वजूद होता ही नहीं, तो मुतलक माना भी या तो माना मुताबिकी के जिम्मन में होगा या माना तजम्मुनी, और दोनों पर तो एतराज हो रहा है। तो उसका जवाब मैंने आपको बतलाया था भाई कि यहां यहां वजूद की बात हम नहीं कर रहे कि मुतलक का वजूद, हम इरादे की बात कर रहे हैं कि यहां कौन सा माना मुराद है, और मुतलक का इरादा ठीक है, मुतलक का इरादा आप कर सकते हैं। हां, मुतलक का वजूद अलग नहीं होता, मुतलक हमेशा किसके जिमन में होगा, मुकय्यद के जिमन में होगा, लेकिन मुतलक का आप इरादा कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपसे कहा था मेरे लिए कोई हैवान ले आओ, मुझे कोई हैवान लाकर दिखाओ, मैंने किसका इरादा किया, मुतलक का इरादा किया। इरादा मुतलक का किया जा सकता है, चुनांचे जब मैंने मुतलक का इरादा किया, अब आप कोई हैवान ले आए, आप जो भी हैवान लाएंगे होगा क्या, वो मुकय्यद होगा, वो होगा क्या मुकय्यद, क्योंकि मुतलक अलग होता ही नहीं। आप घोड़ा लाए वो भी क्या है मुकय्यद, वो हैवान साहिल है। आप बकरी ले आए वो भी क्या है, वो भी मुकय्यद है, हैवान जुरुगा है। आप गाय बैल ले आए वो भी मुकय्यद है, हैवान जुखवार है। आप घोड़ा ले आए हैवान साहिल है। आप गधा ले आए हैवान नाहिक है। आप इंसान को ले आए तो हैवान नातिक है। तो हो गए सारे मुकय्यद, लेकिन हर मुकय्यद के जिमन में क्या मौजूद है, मुतलक भी मौजूद है, मुतलक हैवान भी है। तो हर एक को आप कहते हैं ये हैवान है, ये हैवान है, ये हैवान है। तो आप जो भी ले आए आपने मेरी बात पर अमल कर लिया। मैंने क्या कहा था कि मुझे कोई हैवान लाकर दिखाओ, मैंने मुतलक कहा है, इसमें कोई कैद नहीं। मैंने मुतलक का इरादा किया है, और मुतलक का क्या माना, मुझे कोई भी हैवान लाकर दिखा दो। तो आप चाहे गाय ले आए आपने मेरी बात पूरी कर दी, आप चाहे घोड़ा ले आए आपने मेरी बात पूरी कर दी, आप चाहे ऊंट ले आए या चाहे आप इंसान सामने लाकर खड़ा कर दें, इन सब में, इन सब मुकय्यद के ज़िमन में कौन मौजूद है, मुतलक, यानी ये सब हैवान हैं। तो मुतलक का माना जिसमें कोई कैद ना हो। तो देखो मैंने कहा मेरे लिए कोई हैवान मुझे लाकर दिखाओ, तो मैंने मुतलक का इरादा किया, तो मुतलक का इरादा ठीक होता है। हां, मुतलक का अलहदा वजूद नहीं होता, वो उसी मुकय्यद के जिमन में होता है। तो यहां इरादे की बात चल रही है कि इसम की तारीफ में जो माना का लफ्ज आया, इससे कौन सा माना मुराद है, किस माना का इरादा किया गया है। तो बतलाया कौन से माना का इरादा किया गया है, मुतलक माना का। कोई माना होना चाहिए, लेकिन होना क्या चाहिए, मुस्तकिल होना चाहिए। तो इसम के अंदर भी मुस्तकिल माना होता है, फेल में भी। हां, इसम में कौन सा होता है माना मुताबिकी मुस्तकिल होता है, और फेल में कौन सा माना मुस्तकिल होता है, माना तजम्मुनी होता है। तो जो भी माना हो बहरहाल होना मुस्तकिल चाहिए। तो इसम भी दाखिल क्योंकि उसका माना मुताबिकी मुस्तकिल है, और फेल भी इसके अंदर दाखिल क्योंकि उसका माना तजम्मुनी मुस्तकिल है, और हर्फ सिर्फ खारिज हो गया फी नफ्सी ही की कैद से क्योंकि उसका माना मुस्तकिल नहीं है। तो फेल और इसम अभी भी इसमें दाखिल थे, तो फिर आगे गैर मुक्तरिनीन की कैद लगाकर फेल को इससे निकाल दिया। अब तारीफ समझ में आ गई अच्छी तरह। अब आगे आइए भाई आज के सबक पर। कहते हैं वल मुरादु बि आदमिल इक्तिरानी अन यकून बि हसबिल वज़इल अव्वल। अब यहां भाई कुछ एतराजात के जवाब देंगे। एतराजात होंगे मसलन कि भाई आपने क्या कहा, इसम वो कलीमा है जो दलालत करता है ऐसे माना पर जो मुस्तकिल होना चाहिए, और नीज वो माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ न हो। एतराज होता है आपकी ये इसम की तारीफ जामिया नहीं, कुछ इसम इससे निकल गए भाई। तवज्जो है भाई, कौन से इसम निकले? कहते हैं इसमें फेल निकल गया, इसमें फेल आपने पढ़ा है, कुछ इसम हैं जो फेल वाला माना अदा करते हैं, जैसे रुवैदा किस माना में है, अमहिल तू मोहलत दे दे, तो ये अमर के माना में है, और अमर के अंदर कौन सा जमाना होता है, मुस्तकबिल वाला होता है। और कुछ इसी तरह इसमें फेल है वो माजी के माना में है, जैसे हैहाता ऐ बाउदा वो दूर हुआ, देखो माजी वाला माना है। तो अस्माए अफाल इस तारीफ से निकल गए क्योंकि आपने क्या कहा कि इसम के माना के साथ कोई जमाना मिला हुआ न हो, लेकिन ये रुवैदा ये भी इसम है, इसमें फेल, नाम से ही पता चल रहा है, नहवी हजरात इसको इसम कहते हैं। और इसी तरह हैहाता ये भी क्या है, इसमें फेल। तो ये तमाम अस्माए अफाल निकल गए भाई, क्योंकि इनके साथ तो जमाना जुड़ा होता है, तवज्जो है, तो उसका जवाब देंगे कि नहीं भाई ये भी तारीफ के अंदर दाखिल हैं। वजह यह कि असल एतबार वज़ए अव्वल का है। किसका एतबार है? वज़ए अव्वल का, कि जब पहली मरतबा इनको वज़ा किया गया था तो उस वक्त इनके अंदर जमाने वाला माना नहीं था। तवज्जो है, उस वक्त इनके अंदर जमाने वाला माना नहीं था, बाद में फिर इनको दूसरे माना में इस्तेमाल करने लगे। ये तो यूं समझो गोया ये वज़ए सानी है। क्या है भाई? आपने पढ़ा है एक लफ्ज होता है मनकूल, भाई पढ़ा या नहीं? एक माना से उसको नकल कर लिया जाता है दूसरे माना की तरफ। जैसे सलात अरबी जुबान में किसे कहते थे? दुआ को। लेकिन बाद में अहले शरीयत ने इसको नकल कर लिया एक नए माना की तरफ, और वो खास इबादत का नाम है जिसको हम नमाज कहते हैं, जिसमें रुकू भी होता है, कयाम भी, सजदा भी। अब इसको क्या कहते हैं? सलात। तो पहले सलात का लफ्ज वजा था किसके लिए? दुआ के लिए। और फिर इसको नकल कर लिया गया किस माना की तरफ? नमाज के माना की तरफ नकल कर लिया गया, तो इसको मनकूल कहते हैं। क्या कहते हैं? मनकूल। तो इसमें यूं कहो दूसरी वजा होती है। पहली दफा गोया वजा था किसके लिए? दुआ के लिए। अहले लुगत ने, अहले जुबान ने इसको वजा किया था दुआ के लिए। बाद में अहले शरीयत ने इसी लफ्ज को गोया दोबारा वजा कर लिया किसके लिए? नमाज के लिए वजा कर लिया। बात समझ में आ गई? तो असल एतबार वज़ए अव्वल का होता है, वज़ए सानी का एतबार नहीं होता। यहां जिक्र आया वजा का, भाई वजा किसे कहते हैं? कि एक लफ्ज को एक माना के लिए मुकर्रर किया जाए, इसको क्या कहते हैं? वजा। तो ये अल्फाज के वाज़ेअ कौन हैं, किसने वजा किया है इन मानी के लिए? तो उलमा के मुख्तलिफ अकवाल हैं। बाज उलमा फरमाते हैं कि इंसानों ने वजा किया है लफ्जों को मुख्तलिफ मानी के लिए। बाज उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने वजा किया है अल्फाज को मानी के लिए। बाज उलमा फरमाते हैं कि बाज अल्फाज को अल्लाह ताला ने वजा फरमाया और बाज को इंसानों ने वजा किया है। भाई बात समझ में आ गई? तो मुख्तलिफ अकवाल हैं, बस मुख्तसरन खुलासा मैं आपको सुना रहा हूं। भाई तो बाज उलमा का क्या कौल है कि अल्फाज को के माना के लिए किसने वजा किया? इंसानों ने, अहले इलम ने वजा किया है। और ये राय है अहले नजर की, भाई यानी या उलूम अकलिया वालों की यह राय है। भाई जो मनातिका और फलासफा गुजरे उनकी यह राय, भाई समझ में आया? मनातिका और फलासफा जो इस्लाम से पहले गुजरे हैं भाई, क्योंकि मंतिक और फलसफा असल में ये मुसलमानों का इलम नहीं। हां, मुसलमानों ने बाद में इस इलम को और उरूज पर पहुंचा दिया। तो अहले नजर की राय यह है, यानी उलूम अकलिया वालों की राय यह है कि ये अल्फाज का वाज़ेअ इंसान है। जबकि बाज़ उलमा की राय यह है कि अल्फाज के वाज़ेअ अल्लाह ताला हैं भाई, और यह राय है इमाम अबुल हसन अशअरी रहिमहुल्लाह की। भाई वो फरमाते हैं कि अल्लाह ताला वाज़ेअ हैं भाई, जबकि बाज़ उलमा फरमाते हैं के बाज अल्फाज के वाज़ेअ अल्लाह हैं और बाज के वाज़ेअ इंसान हैं भाई। और यह राय है अबू इसहाक इसफराइनी की। भाई तो यह बाज उलमा की राय है, और उलमा ने इसमें तरजीह दी है इमाम अबुल हसन अशअरी की राय को कि अल्फाज के वाज़ेअ अल्लाह ताला हैं भाई, अल्लाह ताला। चुनांचे दलील भी वो जिक्र फरमाते हैं कुरान में। अल्लाह फरमाते हैं वअल्लम आदम अल अस्मा अकुल्लहा, और अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम अस्मा सिखा दिए कि कौन सा लफ्ज किस माना के लिए वजा है। और नीज दूसरी दलील देते हैं कुरान में, अल्लाह फरमाते हैं व मिन आयाति खल्कु समावाति वल अर्स वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम। देखो इख्तिलाफ़े अलसीना, जुबानों का मुख्तलिफ होना, यह अल्लाह अपनी निशानियों में से जिक्र फरमा रहे हैं, और इससे मुराद ये अल्फाज की वजह है मानी के लिए। भाई और नीज इमाम राजी रहमहुल्ला दलील अकली दलील भी देते हैं, कहते हैं अल्फाज की वजह के लिए कौल चाहिए। आप एक लफ्ज को एक माना के लिए वजा करना चाहते हैं तो दूसरे को बतलाएंगे भाई याद रखो ये वाला, जब भी मैं लफ्ज बोलूं इसका यह माना होगा, ये वाला लफ्ज मैं जब भी बोलूं इसका ये माना, तो आप एक लफ्ज को एक माना के लिए वजह कर रहे हैं, ये दूसरे को बताएंगे किसके जरिए, कौल के जरिए, बात करके बताएंगे ना, तो इस कौल के लिए भी वजह चाहिए या नहीं? इससे पहले एक और वजह होनी चाहिए, ये जो बाकी लफ्ज आप बोल रहे हैं, इस लफ्ज के लिए मैंने ये वाला लफ्ज वजह किया है। देखो कितने लफ्ज बोले, इन सब के भी मानी है या नहीं? तो देखो ये मालूम हुआ, इस वजह से पहले ये जो अभी आपने एक नए लफ्ज के लिए की वजह की, इससे पहले ये बाकी अल्फाज के लिए भी वजह चाहिए, और उनकी वजह भी कौल के जरिए होगी तो उनसे पहले एक और कौल चाहिए, उनकी वजह के भी कौल से होगी तो उसके पहले एक और कौल चाहिए, तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा ही नहीं। तो यह तसलसल लाजिम आया, और तसलसल बातिल है, कहीं ना कहीं यह सिलसिला रुकना चाहिए, और इसका और कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि यह कहा जाए कि अव्वल वाज़ेह कौन है, अल्लाह ताला है भाई। और फिर अल्लाह ताला ने ये अल्लाह ताला ने वजा किया तो मखलूक को, इंसानों को किस तरह सिखाया, तो उसमें फरमाते हैं या तो अल्लाह ने बास अंबिया की तरह वही की, जैसे वअल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, तो कोई वही के जरिए सिखाया, या बाज इंसान जो थे उनकी तरफ इल्हाम किया, यानी उनके दिलों में ये अल्फाज और मानी डाले। बात चल रही थी कि एतराज यह हुआ कि आपने जो इसम की तारीफ की कि वो तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ उसका माना नहीं मिला हुआ होता तो असमाय अफाल इसे निकल गए, क्योंकि असमाय अफाल के मानी जमाने के साथ मिले हुए होते हैं। तो उसका जवाब दिया कि भाई दरअसल एतबार वज़ह अव्वल का है, वज़ह अव्वल के एतबार से ये मसदर थे, ये क्या थे, कुछ इनमें से मसदर थे, कुछ जो है वो जार मजरूर थे या जर्फ थे भाई, फिर इनको नकल किया गया इस फेल वाले माना की तरफ। तो कुछ क्या थे पहले, मसदर, और मसदर में जमाना होता है नहीं, देखो तो वज़ह अव्वल के एतबार से इनमें जमाना नहीं था, बाद में इनको इसमें फेल के की तरफ नकल किया गया तो अब इनमें जमाना आ गया, और एतबार किसका है, वज़ह अव्वल का है, तो वज़ह अव्वल के एतबार से इनमें जमाना नहीं था तो ये इसम की तारीफ में दाखिल है। और कुछ इनमें से पहले जार मजरूर थे भाई, जार मजरूर, जार मजरूर में भी कोई जमाना होता है, जार मजरूर में जमाना नहीं होता, इसी तरह कुछ इनमें से क्या थे, जर्फ थे, जर्फ के अंदर भी जमाना, क्योंकि जर्फ जगह या जमाने को कहते हैं ना, जगह या जमाने का नाम है, तो उसका माना भी जमाने के साथ मिला हुआ नहीं होता। बात समझ में आ गई, आपके जहन में इश्काल आएगा कि जर्फ आपने हमें बताया, जर्फ जगह या जमाने का नाम है, तो देखो जमाना तो आ गया जर्फ के अंदर, भाई मैंने बताया था फेल का माना अलग होता है और जमाना उसके साथ अलग जुड़ा होता है, और जर्फ वो तो ऐने जमाने का नाम है, जमाना अलग इसके साथ जुड़ा हुआ नहीं है भाई। जवाब समझ में आ गया, देखिए भाई किताब पर कहते हैं वल मुराद बी आदम इल्तिरानी, और आदम इक्तिरान से मुराद यह है, यानी तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ न मिला हुआ होने से मुराद यह है कि अयकून बिहसबिल वज़इल अव्वली, कि यह वज़ अव्वल के एतबार से हो। इन्होंने तारीफ में क्या कहा कि वो माना तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ न हो, तो तीन जमानों के साथ न मिलने का मतलब इससे मुराद क्या है, वज़ अव्वल के एतबार से मुराद है। फदखल फीही असमाउल अफाली, तो इसम की तारीफ के अंदर असमाए अफाल भी दाखिल हो गए, लिअन्न जमीअहा इम्मा मनकूलतुन अनिल मसादिरिल असलियति, इसलिए क्योंकि ये सारे असमाए अफाल या तो वो नकल किए गए हैं मसादिर असलिया से, किससे, मसादिर असलिया से, यानी जो असल में मसदर थे, जरबुन मसदर है, इसके अंदर कोई जमाना है, जरबुन का क्या माना, पिटाई करना, कोई जमाना समझ में आया, माजी है, हाल है या इस्तकबाल है, नहीं, जमाना समझ में नहीं आया। तो ये सारे किससे नकल किए गए हैं, मसादिर से, और मस्तर के अंदर तो जमाना नहीं होता, तो वज़ह अव्वल में इनमें जमाना नहीं था, फिर इनको नकल किया गया दूसरे माना के लिए, यानी वज़ह सानी की गई उस दूसरे माना के लिए, इसमें फेल वाले माना के लिए, तो अब वज़ह सानी है, उसका एतबार नहीं है, एतबार किसका है, वज़ह अव्वल का है। कहते हैं लिअन्न जमीअहा इम्मा मनकूलतुन अनिल मसादिरिल असलियति, इसलिए क्योंकि सारे जो हैं वो या तो मनकूल हैं मसादिर असलिया से, यानी वो लफ्ज जो असल के एतबार से मसदर थे, सवा उनका नकलुफीहा सरीहन, जी, ये किससे मनकूल है? मसादिर असलिया से, यानी असल में जो क्या थे, मसदर से। तवज्जो है? हां, फिर इनको नकल किया गया किसकी तरफ? इसमें फेल के माना की तरफ। तो बाज जो है उनका मस्दर होना सरीह है और बाज का मस्दर होना गैर सरीह है। इधर तवज्जो करें भाई, ये देखो, ये एक लफ्ज़ है, एक मस्दर है, इसको हमने नकल किया किसकी तरफ? इसमें फेल वाले माना की तरफ। तवज्जो है, मस्दर को नकल किया किसकी तरफ? इसमें फेल वाले माना की तरफ। तो कभी ये नकल करना सरीह होगा, कभी गैर सरीह होगा। कभी नकल करना सरीह किसे कहते हैं? साफ लफ्जों में वाज़ह जो है भाई, क्या माना सरीह होगा और गैर सरीह? मतलब यह है, बाज ऐसे लफ्ज हैं कि इनको आपने किसकी तरफ नकल कर लिया? इसमें फेल, लेकिन मस्दर के माना में ये अभी भी इस्तेमाल होते हैं, मस्दर भी इस्तेमाल होते हैं और इसमें फेल भी इस्तेमाल होते हैं, तो इसको हम कहेंगे नकल सरीह। वा सरीह वाज़ह नकल है। क्या है? क्योंकि मस्दर में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें फेल के माना में भी इस्तेमाल हो रहा है, मालूम हुआ इसी से नकल किया गया है। और बाज वो हैं कि जिनमें मस्दर में कभी इस्तेमाल किया ही नहीं अरबों ने। तवज्जो है, ये मस्दर है इधर देखिए, और इसको नकल किया किसकी तरफ? इसमें फेल के की तरफ, लेकिन मस्दर के माने में ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ, तो इसको कहेंगे कि ये नकल गैर सरीह है। ये क्या है? ये नकल क्या है? यानी वाज़ह नहीं है। बात समझ में आ गई? वाज़ह कौन सी है? एक लफ्ज को आपने मस्दर के माना से नकल किया है इसमें फेल वाले माना की तरफ, तो नकल सरीह यह है कि मस्दर में भी यह इस्तेमाल होता है और इसमें फेल में भी, तो यह सरीह है नकल, मालूम हुआ इसी मस्दर से नकल किया है इसको इसमें फेल की तरफ। और एक यह है कि मस्दर के माना में तो वह इस्तेमाल ही नहीं होता, तो यह नकल तो है लेकिन सरीह नहीं है, यानी यूं कहो इसमें इसका मस्दर के माना में इस्तेमाल होने की हमारे पास कोई दलील मौजूद नहीं। हां, कोई ना कोई ऐसी दलील जरूर होगी जिससे अंदाजा होगा कि यह असल में क्या है, मस्दर था, मस्दर के माना में इस्तेमाल तो नहीं हुआ, लेकिन कोई दलील होगी जिससे पता चले कि यह क्या था असल में, मस्दर था। बात समझ में आ गई? तो नकले सरीह किसको कहते हैं कि वो लफ्ज मस्दर के माना में भी इस्तेमाल हो रहा है और इसमें फेल के माना में भी, इसको क्या कहेंगे? नकले सरीह। और नकले गैर सरीह किसे कहेंगे कि मस्दर के माना में इस्तेमाल नहीं हो रहा, अब सिर्फ किस माना में इस्तेमाल होता है अरबी में, इसमें फेल के माना में, तो इसको क्या कहेंगे? नकले गैर सरीह। भाई देखिए किताब पर कहते हैं, लिअन्ना जमीअहा इम्मा मनकूलतुन अनिल मसादिर असलियती, इसलिए क्योंकि ये सारे या तो नकल किए गए हैं मसादिर असलिया से, सवा उनका नकल फीहा सरीहन, बराबर है कि इनके अंदर नकल या सरीह सराहतन हो, जैसे नहवु रुवैदा, जैसे रुवैदा, फइन्नहु कद युस्तअमलु मस्दरन अयज़न, इसलिए क्योंकि इसको कभी कभार मस्दर के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। रुवैदा बमाने अमहिल के, रुवैदा ज़ैदन अय अमहिल ज़ैदन, तो ये इसमें फेल है लेकिन मस्दर के माना में भी इस्तेमाल होता है। कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, फमहिलिल काफिरीना अमहिल हुम रुवैदा, अमहिल हुम रुवैदा, ये अमहिल फेल खुद आ गया, और रुवैदा देखो मनसूब है, मफूल मुतलक है, और वो मस्दर जो माकबल फेल के माना में हो उसको क्या कहते हैं? मफूल मुतलक। तो अमहिल हुम रुवैदा, यहां रुवैदा जो आया ये मस्दर के माना में है और मफूल मुतलक बन रहा है, और मफूल मुतलक मनसूब होता है, इसीलिए रुवैदा, इसलिए इस पर नसब है। भाई बात समझ में आ गई? तो ये कौन सी नकल है? नकले सरीह है भाई, कि मस्दर के माना में अभी भी यह लफ्ज इस्तेमाल होता है। अव गैर सरीह, या वो नकल क्या होगी? गैर सरीह होगी। नहु हैहाता, जैसे हैहाता लफ्ज भाई, इसके अंदर भी नकल है, इसको भी मस्दर से नकल किया गया है लेकिन नकल सरीह नहीं है, यानी ये मस्दर के माना में इस्तेमाल नहीं होता। नहु हैहाता, जैसे हैहाता, फइन्नहु व इल्लम युस्तअमल मस्दरन, इसलिए क्योंकि इसको अगरचे मस्दर के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाता, इल्ला अन्नहु अला वजन कौकाता, लेकिन यह हैहाता किस वजन पर है? कौकाता वजन पर है, मस्दरी कौका, जो कौका का मस्दर है। किसका मस्दर है? कौका, यु कौकी कौकातन भाई, कौका युकौकी कौकातन, ये मस्तर है भाई, ये मुर्गी की आवाज को कहते हैं भाई, मुर्गी की आवाज। मुर्गी की आवाज उर्दू में क्या है? कौवे की आवाज है काएं काएं, बकरी की आवाज है मैं, बिल्ली की आवाज है म्याऊं म्याऊं। जी मुर्गी की क्या आवाज है? मुर्गी की आवाज उर्दू में उसको ताबीर करते हैं कुड़कुड़ के साथ, मुर्गी कुड़कुड़ा रही है। समझ में आया? तो कुड़कुड़ाना या कुड़कुड़ करना, यह है मुर्गी की आवाज। तो इसके लिए अरबी में क्या लफ्ज है? कौका, कौका युकौकी कौकातन। अब देखो हैहाता, ये इसमें फेल है, बमाने बाउदा, बाई दूर हुआ, वो दूर हुआ, माजी के माना में है, और ये मस्तर के माना में अरबी में इस्तेमाल नहीं होता, तो ये नकले गैरे सरी है। लेकिन मस्दर, ये मस्दर था कुछ ना कुछ, इसके लिए एक दलील हमारे पास है, और वो क्या दलील? कि ये कौकात वजन पर है। देखो हैहात कौकात दोनों का एक वजन है या नहीं? तो ये कौकात वजन पर है, और कौकात तो मस्दर है, मालूम हुआ हैहात भी असल में क्या होगा? मस्दर होगा। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु अला वज़्नि कौकाता, मगर ये कौकाता के वजन पर है। कौकाता तवज्जो है, कौकात ये गैर मुनसरिफ है यहां पर भाई, अला वज़्नि कौकाता, वजन है मुजाफ, कौकात है मुजाफुन इले, और मुजाफुन इले क्या होता है? मजरूर। और तो कहना तो यूं चाहिए था अला वज़्नि कौकातिन, लेकिन मैंने क्या पढ़ा? अला वज़्नी कौकाता। क्यों? क्योंकि गैर मुनसरिफ है, तवज्जो है, गैर मुनसरिफ। कौन से दो सबब हैं इसके अंदर? जी बताइए भाई, कौन से दो सबब हैं जिसकी वजह से यह गैर मुनसरिफ है? एक तो इसमें तानीस है, गोलता नजर आ रही है आपको, ताय मरबूता भाई। दूसरा सबब क्या? कि यह आलम है, आलम है, क्या है? आलम है। वो जो मस्तर कौकाता अरबी में आता है, उसका नाम ही हमने क्या रख दिया? कौकात रख दिया। तवज्जो है, तो उस मस्तर का नाम ही कौकात रख दिया, तो ये इस वक्त आलम है। तो दो सबब क्या हुए? एक तानीस और एक आलमियत भाई, तो ये गैर मुनसरिफ है। इल्ला अन्नहु अला वज़्नि कौकाता, मगर ये कौकाता के वजन पर है। कौन सा कौकाता? मस्दरी कौका, वो कौकात जो कौका का मस्दर है। ये सिफत है कौकात की भाई, कौकात मजरूर, तो इसलिए इसकी सिफत मस्दरी कौका, ये भी क्या है? मजरूर। अच्छा, मैंने क्या दो सबब बताए कौकात में? एक ताय तानीस और एक आलमियत। ताय तानीस तो आपको समझ में आ गई, गोल ता साथ जुड़ी हुई है। ये अलमियत, ये अलम कैसे है, ये बात आपको अभी भी समझ में नहीं आई होगी, तो याद रखो अलम होने की निशानी ये है। जरा इसका तर्जमा करो, अला वज़्नि कौकाता, ये किस वजन पर है? कौकाता वजन पर है भाई। कौकाता का क्या माना? कुड़कुड़ाना, मुर्गी का कुड़कुड़ाना। आप कौकाता का तर्जमा क्यों नहीं कर रहे? अन्नहु अला वज़्नि कौकाता, क्या मेरा यह तर्जमा सही है? सुनना जरा, कि यह कुड़कुड़ाने के वजन पर है। जी बात ठीक है मेरी? गलत है भाई। मालूम हुआ यहां कौकाता अलम है, और आप जाब्ता जानते हैं अलम का तर्जमा नहीं किया जाता भाई, यह दलील है। अगर यह अलम ना होता तो फिर क्या किया जाता? इसका तर्जमा किया जाता। आप किसी से भी कहें कि यह तर्जमा करो, तो वो इस कौकाता का तर्जमा नहीं करेगा, बल्कि यूं कहेगा ये कौकाता वजन पर है। मालूम हुआ कौकाता से माना का इरादा नहीं है, बल्कि ये उस लफ्ज का नाम ही क्या रख दिया? कौकाता। तो ये आलम है, और आलम का तर्जमा नहीं किया जाता। आपका एक साथी है, उसका नाम है अब्दुल्ला। आप दूसरों को बतलाते हैं कि भाई आज अल्लाह का बंदा आया था, बतलाते हैं किसी को इस तरह, बल्कि क्या कहते हैं? अब्दुल्ला आया था। देखा, आलम का तर्जमा नहीं किया जाता। याद रखो, जब भी इबारत के अंदर कोई ऐसा लफ्ज आ जाए जिसका तर्जमा नहीं कर रहे आप, तो समझ जाए ये आलम के दर्जे में है। ये किसके दर्जे में है? आलम के दर्जे में है भाई। बात समझ में आ गई? तो जिस लफ्ज का तर्जमा ना हो वो किसके दर्जे में होता है? आलम के दर्जे में होता है। तो कहते हैं इल्ला अन्नहु अला वज़्नि कौकाता मस्दरी कौका, मगर ये कि ये कौकाता के वजन पर है जो कौका का मस्दर है। औ अनिल मसादिरिल लती कानत फिल असली अस्वातन, या ये इसका अतफ पीछे वो जो आया था ना, लिअन्ना जमीअहा इम्मा मनकूलतुन अनिल मसादिरिल असलियती, इसलिए कि ये सारे इसमें फेल या तो मनकूल होते हैं किससे, मसादिर असलिया से। अब आगे आ गया औ अनिल मसादिरिल लती कानत फिल असली अस्वातन, या उन मसादिर से जो असल में अस्वात थे, आवाजें थी। अस्वात सौत की जमा, आवाजें थी। नहु सह भाई सह स्वात और गोलहा सह सह ये इसमें फेल है, इसका माना है अभी खामोश हो जाओ, अभी खामोश हो जाओ। और ये असल में कहते हैं सिर्फ आवाज थी, इसका कोई माना नहीं था। सह बस क्या थी, सह आवाज, इसका कोई माना नहीं था। फिर इसको सुकूत मस्तर की तरफ नकल कर लिया गया, किस माना में हुआ, खामोश होना, मस्तर की तरफ नकल कर लिया गया। सह पहले क्या थी, आवाज थी, माना इसका कोई नहीं था, किसी माना के लिए यह वजह नहीं था। फिर इसको किसकी तरफ नकल कर लिया गया, माना की तरफ, यानी मस्तर के माना में की तरफ नकल कर लिया गया, और यह सुकूत के माना में हुआ, यानी साकित होना, खामोश होना, खामोश होने की तरफ नकल कर लिया गया। और फिर उस मस्तर से इसको नकल कर लिया गया किसकी तरफ, इसमें फेल की तरफ, के सह अभी खामोश हो जाओ, अभी खामोश हो जाओ, तो उसकी तरफ इसको नकल कर लिया गया। तो यह भी किससे नकल किया गया है, सह इसमें फेल है, इसको किससे नकल किया गया है, मस्दर से, और वो मस्दर असल में क्या था, सौत थी, आवाज था भाई। तो कहते हैं औ अनिल मसादिरिल लती कानत फिल असली अस्वातन, ये इसमें फेल, या वो नकल किए जाते हैं उन मसादिर से जो असल में अस्वात होती हैं। नहु सह जैसे के सह भाई। औ अनिल जरफी अविल जारी वल मजरूरी, और ये अस्माए अस्वात या मनकूल होते हैं किससे, जरफ से या जार मजरूर से। नहु अमामका ये इसमें फेल है, और माना है इसका सामने नजर रखो, यानी सामने देखो। ये किसी को डराने के लिए है भाई, तहजीर के लिए है, तहजीर भाई, सामने कोई खतरा है या कोई चीज है तो आप फौरन दूसरे को कहते हैं अमामा का, क्या माना, सामने नजर रखो, सामने देखो, आप गिरने लगे हैं या कोई और चीज, कोई खतरा है आगे भाई। बात समझ में आ गई, तो अमामा का इसका क्या माना है, सामने नजर रखो या देख कर चलो। तो यह तहजीर के लिए है, डराने के लिए है, खबरदार करने के लिए है। और असल में यह जर्फ है, अमाम का क्या माना, सामने भाई, खल्फ का क्या माना, पीछे भाई। तो अमाम जर्फ है, अमामा का मुजाफ मुजाफिले हैं, इस सारे को इसमें फेल के तौर पर इस्तेमाल करने लगे। तो ये असल में जर्फ है और उसे नकल करके क्या बना लिया गया, इसमें फेल। और जब जर्फ है तो जर्फ के साथ तो जमाने का माना जुड़ा हुआ नहीं, जर्फ खुद जमाने या जगह का नाम है लेकिन इसके साथ जमाना जुड़ा हुआ नहीं होता। औ अलैका या अलैका, अलैका बमाने इल्जम, लाजिम हो जा। अलैका जैदन, तू लाजिम हो जा किसके साथ, जैद के साथ। तवज्जो है, अलै का जैदन, तू जैद के साथ लाजिम हो जा। अब देखो ये जार मजरूर है, अला और काफ जारा, अला हर्फ जर है और काफ जमीर है, तो इन दोनों को मिलाकर इसमें फेल बना लिया। तो मालूम हुआ ये इसमें फेल किससे नकल किया गया है, जार मजरूर से, किससे, जार मजरूर से। जैसे अमामा का उसको जर्फ से नकल किया गया था मुजाफ मुजाफिले के मजमुए से, इसी तरह यहां पर भी इसको जार मजरूर से नकल कर लिया गया। अलैका का क्या माना, इल्जम, तू लाजिम हो जा, तू लाजिम हो जा जैद के साथ। अल्जिम जैदन नहीं भाई, बाज उलमा इसका तर्जमा क्या कर देते हैं, अल्जिम, अल्जमा युल्जिम, देखो माना में गौर कर लो। अलैका जैदन का तर्जमा होता है तू जैद के साथ लाजिम हो जा, जैद को लाजिम पकड़ ले, यानी उसके साथ साथ रहो, तुम क्या करो, जैद के साथ साथ रहो। तो आप कहते हैं अलैका जैदन, मसलन जैद जो है बड़ा मेहनती तालिब इलम है, बड़ी अच्छी आदात हैं, तो आप दूसरे को कहते हैं अलैका जैदन, तुम जैद को लाजिम पकड़ो उसके, यानी उसके साथ साथ रहो और उसकी आदात देखकर सीखते चले जाओ भाई। तो यह किस माना में हुआ, इल्जम जैदन, लजीमा यलजमु का माना होता है लाजिम होना, तो यह किस माना में हुआ। नहीं तवज्जो, मैं बयान इसलिए कर रहा हूं कि किताबों में इसका तर्जमा आगे लिखते हैं कि अलैका जैदन का क्या माना है, इल्जम जैदन, और बाज तलबा फिर इसको क्या पढ़ते हैं, अलजिम जैदन पढ़ते हैं। अलजिम जैदन ना पढ़ना आप, इसको क्या पढ़ना, इल्जम, क्योंकि यह बाब समिया से है, लजीमा यलजम, तो जैद के साथ लाजिम हो जा, और अलजम युलजिम इल्जामन बाबे फाल में ले जाओ तो इसका मतलब है लाजिम कर दे, ये दो मफूल चाहता है, अलजिम जैदन, तू जैद के साथ लाजिम कर दे, किसको लाजिम कर दे, आगे एक और मफूल भी चाहिए भाई, तो अलजिम आपने वहां नहीं पढ़ना बल्कि इसको क्या पढ़ना है, इल्जम पढ़ना है। दोबारा तर्जमा देख लें, कहते हैं औ अन ज़र्फ़ी अविल जारी वल मजरूरी, या वो अस्माए अफाल जो है वो मनकूल होते हैं ज़र्फ़ से या जार मजरूर से, नहु अमामा का ज़ैदन व अलैका का ज़ैदन, जैसे कि अमामा का ज़ैदन और अलैका का ज़ैदन ये ज़र्फ़ और जार मजरूर से मनकूल हैं, फलैसा लिशैइन मिन्हा दलालतु, तो नहीं है इनमें से किसी की भी दलालत। भाई ये जो हमने जो भी जिक्र कर दिए, चाहे मसादिर से नकल हुए हों तो वो जो मसादिर हैं उनके अंदर भी जमाने वाला माना नहीं होता, अगर ये आवाज से मनकूल हैं तो उसमें भी जमाने वाला माना नहीं होता, और अगर ये ज़र्फ या जार मजरूर से मनकूल हैं या अस्माए अफ़ाल तो उसमें भी जमाने या जगह वाला माना नहीं होता। तो देखो इस वक्त तो ये इसमें फेल है, इनमें जमाना है, लेकिन असल वज़ा में जो भी थे ये, चाहे ये मस्तर थे, चाहे आवाज थी, चाहे जार मजरूर या ज़र्फ था, उसमें तो जमाना नहीं था, तो असल वजह में ये जमाने से खाली थे, तो ये इसम की तारीफ में दाखिल हैं। इसम भी उसको कहते हैं जिसके साथ तीन जमाना में से कोई जमाना मिला हुआ ना हो, और इनके साथ भी असल वजह में जमाना मिला हुआ नहीं था, तो ये सब इसम की तारीफ में दाखिल हैं। बात समझ में आ गई, ये माना है फलैसा लिशैइन मिन्हा दलालतु, तो इनमें से किसी भी चीज की दलालत नहीं है, अला अहदिल अज़मिनति सलासती, तीन जमानों में से किसी एक पर, बिहसबिल वज़इल अव्वली, वज़इ अव्वल के एतबार से, वज़इ अव्वल के एतबार से इनमें किसी के अंदर भी तीन जमानों में से किसी जमाने पर दलालत नहीं है। वखरज अनहुल अफ़ालुल मुनसलिखतु अनिज़्ज़मानी, ये एक और एतराज का जवाब, शुबा आ सकता है आपके जहन में भाई कि अफ़ाल मुकारबा इसके अंदर दाखिल हो गए इसम की तारीफ में। अफ़ाल मुकारबा वो हैं जो एक चीज के करीब होने पर दलालत करें, किस चीज के, याद रखो ये जो अफ़ाल मुकारबा हैं ये एक इसम चाहते हैं और एक खबर चाहते हैं, और ये इस बात पर दलालत करते हैं कि ये जो हमारा इसम है इसकी जो आगे खबर आ रही है यह खबर इसको हासिल होने ही वाली है, यह खबर के साथ मुत्तसिफ होने ही वाला है। कादा ज़ैदुन अय्या ज़रीबा, करीब है कि जैद पिटाई करे, यानी पिटाई करना जैद को हासिल होने ही वाला है, वो पिटाई करने ही वाला है। तो यह अफ़ाल मुकारबा करीब होने के माना पर दलालत करते हैं, इनके अंदर खुद जमाना नहीं है, खुद इनके अंदर जमाना नहीं, जब खुद इनके अंदर जमाना नहीं तो इनको क्या कहना चाहिए, इसम कहना चाहिए, तवज्जो है, इसम कहना चाहिए, तो ये तो इसम की तारीफ में दाखिल हो गए क्योंकि इनका माना मुस्तकिल भी है और तीन जमानों में से किसी जमाने के साथ मिला हुआ भी नहीं। कहते हैं नहीं भाई, ये भी इसम की तारीफ में दाखिल नहीं हो रहे, ये अफाल हैं, इसीलिए तो नहवी इनको अफाल कहते हैं, अफाल मुकारबा, भाई क्यों नहीं दाखिल, कहते हैं असल एतबार किसका है, वज़ अव्वल का है, वज़ अव्वल के एतबार से इनके साथ जमाना था, फिर बाद में इनको जमाने से खाली कर लिया गया, अब जमाने वाला माना इनमें नहीं, तो असल वजह में जमाना था या नहीं, जब असल वजह में इनके साथ जमाना मिला हुआ था तो ये इसम है या फेल है, फेल है, तो ये फेल है, ये फेल ही रहेंगे, ये इसम की तारीफ में दाखिल नहीं है। तो कहते हैं वखराज अनहुल अफ़ालुल मुनसलिखतु अनिल ज़मानी, और निकल गए इस इसम की तारीफ से वो अफ़ाल अल मुनसलिखतु जो खाली हैं, इन सलाखा का माना खाली होना, वो अफाल जो खाली हैं, अनि जमानी जमाने से, नहु असा व कादा, जैसे असा और कादा हैं, लिखतेरानी मानी हाबी ही, इसलिए क्योंकि इनके मानी तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ मिले हुए हैं। बेहसबी असली वज़ई, इनकी वज़े अव्वल के एतबार से, इस वक्त तो नहीं लेकिन वज़े अव्वल के एतबार से इनके साथ जमाना मिला हुआ था। व खराज अनहुल मुज़ारिउ ऐज़न, जी एक और शुबे का जवाब। शुबा यह होता है आपकी इस तारीफ से फेले मुजारे भी इस सन की तारीफ में दाखिल हो गया। मुजारे के बारे में याद रखो, इसके बारे में उलमा के तीन मजाहिब हैं। भाई आप जानते हैं फेले मुजारे के अंदर हाल वाला माना भी होता है और मुस्तकबिल वाला भी। हां जब आप इस्तेमाल करेंगे तो एक माना में इस्तेमाल करेंगे, या हाल में या इस्तकबाल में, तो दलालत ये दोनों जमानों पर करता है लेकिन इस्तेमाल एक वक्त में एक ही जमाने के अंदर आप करेंगे। यज़रिबु ज़ैद बोलकर या तो हाल वाला माना लेंगे कि ज़ैद पिटाई कर रहा है, या यज़रिबु ज़ैदुन कि ज़ैद पिटाई करेगा, भाई मुस्तकबिल वाला। एक वक्त में एक ही माना मुराद ले सकते हैं, दोनों माना का इरादा नहीं कर सकते। तो बहरहाल मुजारे के अंदर तीन मजहब हैं भाई। एक मजहब यह है, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि मुजारे को असल में वजा किया गया है हाल के लिए, और मुस्तकबिल के माना में जो इस्तेमाल होता है वो मजाजन होता है, वो इसका हकीकी माना नहीं है। जैसे शेर का लफ्ज असल में एक जंगली दरिंदे के लिए वजा है लेकिन मजाजन इसको कभी किसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, बहादुर आदमी के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो एतबार हकीकी माना का होता है और हकीकी माना के एतबार से मुजारे सिर्फ किसके लिए वजा, हाल एक जमाने के लिए, तो एक जमाना इसके साथ मिला हुआ है। और मुस्तकबिल वाले माने में जब इस्तेमाल करते हैं यह मजाजी माना है, यह इसका हकीकी माना नहीं। जबकि बाज उलमा फरमाते हैं कि फेले मुजारे को मुस्तकबिल के माना के लिए वजा किया गया है, हाल में जो इस्तेमाल होता है वह मजाजन है। ये पहले कॉल के बरक्स है। पहले कॉल वाले क्या कहते थे, हाल के लिए हकीकत है और मुस्तकबिल के लिए मजाज, जबकि बाज उलमा क्या फरमाते हैं, मुस्तकबिल में ये हकीकत है और हाल के लिए मजाज, यानी वजह एक ही जमाने के लिए है, चाहे आप हाल कहें चाहे मुस्तकबिल, दूसरे में वो मजाजन इस्तेमाल हो रहा है। और तीसरा मजहब इसमें यह है कि मुजारे का लफ्ज मुश्तरक है दोनों जमानों में। दोनों भाई आप जानते हैं कभी एक लफ्ज के एक से ज्यादा मानी आते हैं, इसको मुश्तरक कहते हैं। मुश्तरी का माना खरीदने वाला भी, और मुश्तरी आसमान में एक सितारा है, एक सैयारा है, उसका भी नाम है। तवज्जो है, तो ये जो मुश्तरक होता है इसको हर माना के लिए अलग अलग वजा किया जाता है। मालूम हो मुश्तरी के लफ्ज को खरीदार के लिए भी अलग वजा किया गया, अलग मुकर्रर किया गया, और आसमान के सैयारे के लिए भी इसको अलग मुकर्रर किया गया। इसी तरह लफ्ज ऐन के बहुत से मानी आते हैं, ऐन का माना चश्मा भी, ऐन का माना सूरज भी, ऐन का माना घुटना भी, ऐन का माना जासूस भी। बात समझ में आ रही है? तो ऐन के उलमा ने कोई 70 के लगभग मानी जिक्र किए हैं भाई। तो ये ऐन बहुत से मानी के लिए वजह है, तो ये लफ्ज मुश्तरक हुआ, और मुश्तरक हर माना के लिए अलग अलग वजह होता है। मालूम हुआ चश्मे के लिए अलग इसको वजह किया गया, और सूरज के लिए इसको अलग वजा किया गया, और जासूस के लिए इसको अलग वजा किया गया, और ऐन आंख को भी कहते हैं, तो आंख के लिए इसको अलग वजा किया गया। तो लिहाजा बाज उलमा फरमाते हैं कि फेले मुजारे मुश्तरक है बैनल हाल वल इस्तकबाल। मालूम हुआ दोनों के लिए वजा है, ये दोनों माना इसके हकीकी हैं। पहले दो कौल में तो क्या था, एक माना हकीकी था और एक मजाजी, लेकिन तीसरा कौल क्या है, दोनों माना इसके हकीकी हैं, ये मुश्तरक है, दोनों के लिए अलग अलग वजह है। इस कौल पर इश्काल होता है, इस कौल वालों पर इश्काल होता है। मालूम हुआ फेले मुजारे मुश्तरक है हाल में भी और इस्तकबाल में भी, तो ये तो इसम की तारीफ में दाखिल हो गया। ये किस तरह इसम की क्या तारीफ की कि उसका माना तीन जमानों में से किसी एक जमाने के साथ ना मिला हुआ हो, तो फेले मुजारे वो भी तो एक जमाने के साथ नहीं मिला हुआ, वो तो कितने के साथ मिला है, दो के साथ मिला है। तो हमने तो कहा था एक के साथ ना मिला हो, तो ये भी एक के साथ तो नहीं मिला हुआ, कितने के साथ मिला हुआ है, शर्त पूरी हो गई या नहीं, लिहाजा ये भी इसम की तारीफ में दाखिल हो गया। तवज्जो है, तो उसका भी जवाब देंगे आपको कि भाई जब दो जमानों के साथ मिला हुआ है तो दो के जिमन में उन दो के अंदर एक भी आ गया कि नहीं भाई, तो ये एक जमाने के साथ भी जुड़ा हुआ है, लिहाजा ये भी तारीख से खारिज हुआ। इश्काल क्या किया था कि आपने क्या कहा, इसम एक जमाने के साथ न जुड़ा हुआ हो, और यह तो कितने के साथ जुड़ा होता है, दो के साथ, तो यह तो दाखिल हो गया, इसमें तो शर्त पूरी है, यह तो एक के साथ नहीं जुड़ा हुआ। कहते हैं नहीं भाई, जब दो के साथ जुड़ा हुआ है तो दो के बीच में क्या आ गया, एक भी आ गया, एक के साथ भी तो यह जुड़ा हुआ है, तो लिहाजा यह क्या हुआ, तारीफ से खारिज हुआ। देखिए भाई, कहते हैं वखराजा अनहुल मुजारे ऐजन, और इसम की तारीफ से मुजारे भी निकल गया। फइन्नहु अला तकदीर इश्तिराकिही बैन अलहाल वल इस्तिक्बाल, इसलिए क्योंकि ये फेले मुजारे जो है ये हाल और इस्तिक्बाल में इश्तिराक की तकदीर पर, तवज्जो है लफ्ज तर्जमा समझ लेना भाई, कि फेले मुजारे जो है हाल और इस्तिक्बाल में इश्तिराक की तकदीर पर, यानी अगर इश्तिराक को फर्ज कर लिया जाए। असल में तो यहां तीन मजाहिब हैं, पहला मजहब क्या, हाल में हकीकत और मुस्तकबिल में मजाज, दूसरा क्या, मुस्तकबिल में हकीकत और हाल में मजाज, इन दो तारीफों पर तो कोई एतराज होता ही नहीं है, क्योंकि एतबार सिर्फ हकीकी माना का होता है, और इन दोनों कौलों के मुताबिक सिर्फ एक माना के लिए मुजारे वजा है, दूसरे में मजाज है, तो यह इसम की तारीफ से निकल गया, एक जमाने के साथ मिला हुआ है, और इसम की तारीफ में भी क्या कहा, वो एक जमाने के साथ मिला हुआ ना हो, तो उन पर तो कोई इश्काल होता ही नहीं था। ये तीसरा कौल जो था कि दोनों के दरमियान मुश्तरक है, इस पर इश्काल होता था, तो सिर्फ इसी का जवाब दे रहे हैं अल्लामा जामी। वो पहले दो मजहबों को जिक्र ही नहीं किया कि अगर फेले मुजारे जो है यह फर्ज कर लिया जाए कि दोनों के दरमियान मुश्तरक है, अगर ये फर्ज कर लिया जाए यानी तीसरे मजहब को मान लिया जाए तो भी उसका यह जवाब है। तो कहते हैं फइन्नहु अला तकदीर इश्तिराकिही बैनल हाल वल इस्तिक्बाली, इसलिए क्योंकि फिल मुजारे जो है हाल और इस्तिक्बाल में इश्तिराक की तकदीर पर, यानी इश्तिराक फर्ज करने की सूरत में, यदुल्लु अला ज़मानैनि मुअय्यनैनि मिनल अज़मिनति सलासा, यह दलालत करता है दो मुअय्यन जमानों पर, तीन जमानों में से, फयदुल्लु अला वाहिदिन मुअय्यनिन ऐज़न फी ज़िम्निहा, तो एक मुअय्यन जमाने पर भी यह दलालत करता है, फी ज़िम्निहा है या फी ज़िम्निहिमा है, फी ज़िम्निहिमा, जी मेरी किताब में ज़िम्निहा है, यह ज़िम्निहिमा होना चाहिए, तो फयदुल्लु अला वाहिदिन मुअय्यनिन ऐज़न फी ज़िम्निहिमा, तो यह एक मुअय्यन जमाने पर भी दलालत कर रहा है, फी ज़िम्निहिमा, दो जमानों के ज़िमन में, दो के जिमन में ये एक पर भी दलालत कर रहा है, जब एक पर दलालत कर रहा है तो इसम की तारीफ से निकल गया, क्योंकि इसम उसमें कैद थी कि वो किसी एक जमाने पर दलालत न करे। इस लायक दहुफी दलालती अला आहदिन मुअय्यनिन दलालतु अला मा सिवाहु, यहां से ये बतला रहे हैं कि अगर ये कौल लिया जाए कि फेले मुजा, आपने किस कौल को जिक्र किया, तीसरे कौल को, कि फेले मुजारे दोनों जमानों पर दलालत करता है, हाल पर भी और इस्तकबाल पर भी, और यह मुश्तरक है इन दोनों जमानों के दरमियान, तो फिर इस सूरत में यहां तो उमूम मुश्तरक लाजिम आएगा, और आप उसूल फिका में पढ़ चुके हैं उमूम मुश्तरक जायज नहीं, उमूम एक लफ्ज के दो माना हो और आप दोनों माना का इरादा कर लें भाई एक ही वक्त के अंदर, भाई ये जायज नहीं है। मुश्तरी का लफ्ज बोलें और उसे खरीदार का भी इरादा कर लें और आसमान के सैयारे का भी इरादा कर लें, ये तो उमूम मुश्तरक है। ये लफ्ज क्या था, मुश्तरक, कितने मानी में, दो में, और आपने इस्तेमाल में उमूम पैदा कर दिया, किस तरह, दोनों माना मुराद ले लिए, पहला भी और दूसरा भी, और उमूम मुश्तरक आप उसूल फिका में पढ़ चुके हैं जायज नहीं है, एक वक्त में एक माना का इरादा आप कर सकते हैं, दोनों मानी का इरादा नहीं कर सकते। तो आपने क्या कहा कि फेले मुजारे जब दो पर तवज्जो से सुनो, फेले मुजारे जब दो पर दलालत कर रहा है तो उसके जिमन में एक पर भी दलालत हो गई या नहीं, कहते हैं भाई आपकी बात मान ली जाए, दो पर यह दलालत कर रहा है, यह तो अमूम मुश्तरक लाजिम आया, हाल पर भी यह दलालत कर रहा है और इस्तकबाल पर भी दलालत कर रहा है, यह तो अमूम मुश्तरक लाजिम आया, और अमूम मुश्तरक तो जायज नहीं। तो उसका जवाब आपको देंगे शारह जामी कि भाई अमूम मुश्तरक एक है दलालत में, एक है इरादे में, अमूम मुश्तरक इरादे में जायज नहीं है, दलालत में जायज है भाई, दलालत में एक ही चीज दस मानी पर दलालत कर सकती है, लेकिन इरादा आप एक का करेंगे। जैसे ऐन के बहुत सारे मानी हैं, जैसे ही मैं लफ्ज ऐन बोलूंगा दलालत ये सब पे कर रहा है। हां, मैं इरादा उनमें से किसी एक माना का करूंगा, इरादा मैं सबका नहीं कर सकता। याद रखो, एक लफ्ज से एक माना का इरादा आप तब ही कर सकते हैं जब वो उस पर दलालत कर रहा हो। अगर वो दलालत ही ना कर रहा हो उस माना पर, तो उसका आप इरादा भी नहीं कर सकते। तवज्जो है, बकरी बोलकर मैं हाथी का इरादा कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि बकरी का लफ्ज हाथी पर दलालत कर ही नहीं रहा। दलालत करता तो मैं इरादा भी कर सकता था। हां, ऐन के लफ्ज, ऐन का लफ्ज मैंने जैसे ही बोला, इसने आंख, इस पर भी दलालत की, इसने सूरज, उस पर भी दलालत की, इसने जासूस पर भी दलालत की, इसने सोना जो है सोना चांदी, इसने सोने पर भी दलालत की। तो जब ये सब पर दलालत कर रहा है, अब मेरी मर्जी है, मैं जो चाहूं जिस माना का इरादा कर लूं, लेकिन करूंगा एक ही माना का इरादा। जैसे कल मैंने मिसाल दी थी, इंसान बोलो तो दलालत मुताबिकी भी हुई, तजमुनी भी हुई, इल्तिजामी भी हुई। इंसान बोलकर मैं हैवान नातिक का भी इरादा कर सकता हूं, यह दलालत मुताबिकी है। इंसान बोलकर सिर्फ हैवान या सिर्फ नातिक का भी इरादा कर सकता हूं, यानी एक जुज का, यह दलालत तजमुनी है। और इंसान बोलकर मैं उसके जहक या उसकी काबिलियत इलम का इरादा भी कर सकता हूं कि उसमें अल्लाह ने इलम की सलाहियत रखी है, यह इसके साथ लाजिम है, यह इससे जुदा नहीं। इंसान बोलकर मैं हैवान नातिक का भी इरादा कर सकता हूं, यानी दलालत मुताबिकी भी, और दलालत तजमुनी का भी इरादा कर सकता हूं, और दलालत इल्तिजामी का इरादा भी कर सकता हूं। और इरादा तभी करूंगा ना जब वो दलालत कर रहा होगा। दलालत नहीं करेगा तो मैं इरादा भी नहीं कर सकता। किताब बोलकर मैं कलम का इरादा नहीं कर सकता, क्योंकि किताब कलम पर दलालत नहीं कर रही भाई। तो इरादा वही होगा जब एक लफ्ज एक माना पर दलालत कर रहा हो। और इसीलिए मैंने कहा था, मैंने जैसे ही लफ्ज इंसान बोला, तीनों दलालतें हो गई। तो लबा समझते हैं शायद जिसका इरादा किया वही दलालत हुई, बाकी नहीं हुई। नहीं, दलालतें तीनों हो गई, इरादा मैंने उसमें से एक का किया है। तो यहां पर भी एतराज क्या हुआ था कि आपने कहा फेले मुजारे दोनों मानी पर दलालत का, दोनों जमानों पर दलालत कर रहा है, हाल पर भी और इस्तकबाल पर भी। तो दो पर जब दलालत हुई तो उसके जिमन में एक पर भी दलालत हो गई। तो इश्काल हुआ कि भाई दो पर दलालत कर रहा है, ये तो आपने उमूम मुश्तरक ले लिए, यहां तो उमूम मुश्तरक लाजिम आ गया, और हमने पढ़ा है उमूम मुश्तरक जायज नहीं। तो मुला जामी रहमतुल्लाह आपको बताएंगे कि उमूम मुश्तरक दलालत में जायज है, इरादे में जायज नहीं है। दलालत दो या दो से ज्यादा पर भी हो सकती है, अलबत्ता इरादा एक ही का करना पड़ेगा। तो हासिल कलाम क्या हुआ कि दलालत में उमूम मुश्तरक जायज है, इरादे में उमूम मुश्तरक जायज नहीं है। बात समझ में आ गई। कहते हैं इज ला यकदहु फि दलालति अला अहदिन मुअय्यनिन दलालतु अला मा सिवाहु, इसलिए क्योंकि ऐब नहीं है। कदह यकदहु का माना है ऐब होना, एतराज होना। इज ला यकदहु ऐब नहीं है, यूं कहो एतराज नहीं होता किस चीज में, फिर दलालती अला अहदिन मुअय्यनिन, जब दलालत कर रहा हो कोई लफ्ज किसी मुअय्यन पर। ऐब नहीं है किसी मुअय्यन पर दलालत करने में, क्या ऐब नहीं है, अदलालतु अला मा सिवाहु, कि इसके अलावा पर भी वो दलालत करे उसके। भाई देखो, मैंने लफ्ज इंसान बोला, लफ्ज, और मैंने बताया कि जैसे ही मैंने लफ्ज इंसान बोला दलालत मुताबिकी भी हुई, तजमुनी भी हुई और इल्तिजामी भी हुई। तीनों दलालतें हो गई या नहीं? एक मुअय्यन दलालत कौन सी, मसलन मुताबिकी, कोई एक ले लो इनमें से एक मुअय्यन दलालत, मसलन कौन सी, मुताबिकी ले लो या तजमुनी ले लो या इल्तिजामी, तो किसी एक मुअय्यन दलालत के साथ बाकी भी दलालतें हुई या नहीं? लेकिन ये एक मुअय्यन दलालत के साथ और दलालतों का होना ऐब नहीं है। हां, एक मुअय्यन के इरादे के साथ औरों का भी इरादा करना ये क्या है, ऐब है, ये काबिल एतराज है भाई। ये माना है इज ला यकदहु फि दलालति अला अहदिन मुअय्यनिन, क्योंकि ऐब नहीं है किसी एक मुअय्यन पर दलालत में, क्या ऐब नहीं है, अदलालत अला मा सिवाहु, के दलालत हो जाए उसके अलावा पर भी। किसी एक मुअय्यन पर दलालत में उसके अलावा पर भी दलालत हो जाए यह ऐब नहीं। नाम यकदहु फी इरादतिल मुअय्यनी, हां ऐब है किसी मुअय्यन के इरादे में, इरादतु मासिवाहु उसके अलावा का इरादा करना, एक मुअय्यन चीज के इरादे के अंदर दूसरी चीज का भी इरादा करना यह ऐब है, यह तान का बाइस है, एतराज का बाइस है। भाई बात समझ में आ गई। फिर इबारत का तर्जमा देख लें, इजला यकदहु फी दलालति अला अहदिन मुअय्यनिन दलालतु अला मा सिवाहु, इसलिए क्योंकि किसी एक मुअय्यन पर दलालत करने के अंदर उसके अलावा पर दलालत करना ऐब नहीं है। नाम यकदहु फी इरादतिल मुअय्यन इरादतु मा सिवा, हां ऐब है किसी एक मुअय्यन के इरादे के अंदर उसके अलावा का इरादा करना, यह ऐब है, यह एतराज का बाइस है, यह काबिले तान है, इस पर एतराज हो सकता है। वह ऐन दलालतु मिनल इरादती, वह ऐन दलालतु मिनल इरादती, याद रखो ये जो मीन आया यहां पर यह फसल के लिए है, दो मुतजाद चीजों के दरमियान, दो चीजों में फसल और इम्तियाज के लिए कभी मीन आता है, या आसान लफ्जों में कहो दो चीजों में मुकाबले के लिए कभी मीन आता है कि ये दोनों चीजें क्या हैं, एक दूसरे के मुकाबिल हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं, उसके लिए मीन आता है। जैसे वल्लाहु यालमुल मुफसिदा मीनल मुसलिह, एक है मुफसिद फसाद फैलाने वाला, एक है मुसलिह इसलाह करने वाला, तो वल्लाहु यालमुल मुफसिदा, अल्लाह जानते हैं फसाद करने वाले को, मीनल मुसलिह मुसलिह के मुकाबले में, अल्लाह मुसलिह के मुकाबले में फसाद करने वाले को खूब जानते हैं। तो यहां मीन आया किस लिए आया, दो चीजों में फसल के लिए, मुकाबले के लिए, कि मुफसिद और मुसलिह क्या हैं, अलग अलग हैं, ये दूसरे के मुकाबिल हैं। बात समझ में, तो यहां भी मीन किस लिए आया, मुकाबले के लिए। वह ऐन दलालत मीनल इरादती, और कहां दलालत इरादे के मुकाबले में, लफ्जों पर गौर करो, वह ऐन दलालत मीनल इरादती, और कहां दलालत इरादे के मुकाबले में, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं, मुंह में मजाज यहां दलालत में लाजिम आ रहा है, इरादे में नहीं, और दलालत में उमूम मजाज जायज है, हां इरादे के अंदर उमूम मजाज जायज नहीं, तो दलालत बिल्कुल अलग चीज है, इरादा अलग चीज है। मैंने इंसान बोला, दलालतें तीनों हो गई, और इरादा इनमें से मैं एक का करूंगा भाई। तो कहते हैं वह ऐन दलालतु मिनल इरादती, और कहां दलालत इरादे के मुकाबले में, यानी दोनों अलग अलग चीजें हैं भाई। चलिए बस भाई बस करें, बात अच्छी तरह सबको समझ में आ गई। तो हासिल यह हुआ इस सबक का कि इसम की तारीफ पर एतराज होता था कि इसम की तारीफ जामिअ और मानिअ नहीं है, जामिअ नहीं है क्योंकि इस अस्माए अफाल इसमें से निकल गए, क्योंकि उनमें तो जमाना पाया जाता है, जबकि इसम की तारीफ में क्या कैद लगा दी कि उसमें जमाना नहीं होना चाहिए, तो इसम की तारीफ अपने तमाम अफराद को जामिया नहीं, अस्माए अफाल तो इसम है भाई, इनको तो इसम की तारीफ में दाखिल होना चाहिए, लेकिन आपने जब गैर मुख्तरीनीन की कैद लगाई तो ये अस्माए अफाल इसम की तारीफ से निकल गए, तो इसम की तारीफ अपने तमाम अफराद को जामिया नहीं, और इसम की तारीफ मानिया भी नहीं है भाई, इसके अंदर गैर दाखिल हो रहे हैं, जैसे अफाल मुकारबा हैं भाई, अफाल मुकारबा जो करीब होने पर दलालत करते हैं उनमें जमाना नहीं होता, जब उनमें जमाना नहीं है तो वो हैं तो अफाल, लेकिन किस में दाखिल हो रहे हैं, इसम की तारीफ में, क्योंकि इसम भी उसे कहते हैं जो अपने माना पर मुस्तकिलन दलालत करे और जमाना उसके साथ कोई एक मिला हुआ ना हो, तो अफाल मुकारबा भी दाखिल हो गए, इसी तरह फेले मुजारे भी दाखिल हो गया, क्योंकि वो तो एक जमाने के साथ नहीं मिला होता बल्कि दो जमानों के साथ मिला होता है, तो इसम की तारीफ मालूम हुआ मानिअ नहीं, इसमें अफाल मुकारबा भी दाखिल हो गए और फेले मुजारे भी दाखिल हो गया, और शारिह ने फिर इसके जवाब जिक्र कर दिए भाई। बात समझ में आ गई। चलिए बस भाई, हादा हुआ अल मराम, अल्लाहु आलम बिहकीकतिल कलाम।